आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च करने की तैयारी। खान पान की परंपरा को ब्रांड बनाने के लिए सरकार शुरू करेगी एक जनपद एक व्यंजन योजना। प्रदेश में निवेशकों को उपलब्ध होंगी फास्ट ट्रैक सुविधाएं। औद्योगिक विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। इंडिगो की उड़ानों के परिचालन में आई बाधा की समीक्षा को लेकर सरकार ने गठित की 4 सदस्यीय समिति। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा सरकार का मुख्य ध्यान लंबित उड़ानों की संख्या कम करने पर। और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज। श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश भर में आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक जिला एक उत्पाद योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश की पहचान बन चुकी एक जनपद एक उत्पाद योजना अब अगले चरण ODOP 2.0 के माध्यम से स्थानीय उद्योगों, स्वरोजगार और निर्यात को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ODOP 2.0 के माध्यम से सरकार का लक्ष्य होगा कि प्रदेश के पारंपरिक उत्पाद बड़े बाजार, निर्यात और स्थायी रोजगार का मजबूत आधार बने। पेश है एक रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी एक जनपद एक उत्पाद योजना का अब दूसरा संस्करण लॉन्च होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बदलते वैश्विक बाजार, आधुनिक मांग, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता और पैकेजिंग की नई आवश्यकताओं को देखते हुए ODOP को अब और अधिक व्यापक, व्यावसायिक और बेहतर स्वरूप में आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद की विशिष्ट खाद्य परंपरा को भी एक संगठित पहचान देने की दिशा में एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC की धारणा को साकार करने की भी जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ODOP उत्पादों को बड़े रिटेल नेटवर्क और आधुनिक बाजारों से भी जोड़ा जाए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास विभाग के कार्यों की कल समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में विदेशी निवेश के लिए संवाद को बढ़ाया जाए। इसके लिए निवेशकों के साथ नियमित सम्मेलन करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को फास्ट ट्रैक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। एक रिपोर्ट।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पीड, स्टेबिलिटी और सपोर्ट ही नए उत्तर प्रदेश की पहचान होनी चाहिए। इसी से प्रदेश का औद्योगिक विकास तेज होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी के सभी कंट्री डेस्क की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सभी विदेशी डेस्क द्वारा नियमित अंतराल पर राउंड टेबल बैठकें होती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने उद्योगों को गति देने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल पर विशेष जोर दिया। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया है कि सरकार अगले 3 महीनों तक उन लोगों पर कोई जुर्माना नहीं लगाएगी और न ही सख्त कार्रवाई करेगी जिन्होंने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि लाखों संपत्तियां अभी भी पंजीकृत नहीं हुई हैं। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री रिजिजू ने कहा,
जितने भी मुतावली के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्त प्रॉपर्टी से मुतावली के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कल इस साल चौथी बार प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट में कमी की है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। इससे आवास और वाहन ऋण सहित अन्य कर्ज सस्ते होने की उम्मीद है। रामपुर की विशेष MP/MLA कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2 अलग अलग पासपोर्ट रखने के मामले में सुनवाई के दौरान उन्हें दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 50,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ फर्जी कागजात के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों के परिचालन में बाधा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि समिति व्यापक परिचालन बाधाओं के मूल कारणों की पहचान करेगी। इनमें उड़ान ड्यूटी समय सीमा के कार्यान्वयन की तैयारियों का आंकलन शामिल है। उधर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति में सुधार हो रहा है। श्री नायडू ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान हवाई अड्डों पर लंबित उड़ानों की संख्या कम करने पर है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है। इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय के उड़ान ड्यूटी समय सीमा संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घंटे काम करने वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम तेजी से हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि SIR कार्य को पूरा करने के लिए BLO को पूर्ण सहयोग किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रत्येक चरण की सतत मॉनिटरिंग की जाए तथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज में भाजपा कार्यालय पर आयोजित मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी SIR की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। पुनरीक्षण के क्रम में अंबेडकर नगर में अब तक लगभग 99% गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया,
SIR के अंतर्गत जिले में लगभग 18,70,000 वोटर हैं। इनके हम लोग को फॉर्म इन्यूमरेशन फॉर्म भरवा के BLO ऐप में फीड कराने थे, तो वो कार्य लगभग 98.5% हो गया है। और इसमें टाइम एक्सटेंशन भी चुनाव आयोग द्वारा दिया गया था 11 दिसंबर तक का, तो हम लोग लगभग 1 हफ्ता पहले ही इस कार्य को कम्प्लीट कर ले रहे हैं।
वहीं अमरोहा में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के SIR का कार्य 99% और फतेहपुर जिले में SIR प्रक्रिया के तहत 89% सत्यापन का काम पूरा हो गया है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का क्रम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के हजरतगंज में स्थित आम्बेडकर महासभा कार्यालय परिसर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का 63वां स्थापना दिवस भी है। इस अवसर पर लखनऊ के होमगार्ड्स मुख्यालय के परेड ग्राउंड परिसर में रैतिक परेड का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। काशी तमिल संगमम का 4वां संस्करण एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दृढ़ता से पोषित कर रहा है। वाराणसी में कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में काशी और तमिलनाडु की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक परंपराएं विषय पर एक शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया गया। इसमें तमिलनाडु के विभिन्न संस्थानों से आए लगभग 200 शिक्षकों ने भाग लिया। नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से भी बच्चों के लिए कई शिक्षाप्रद और रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का परिचय सत्र भी आयोजित किया गया। उधर उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से तमिलनाडु से आए छात्र समूह ने कल अयोध्या में भगवान श्री रामलला, श्री राम दरबार और श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। छात्रों ने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कहा कि उन्हें पहली बार उत्तर भारत की आस्था, परंपरा और भक्ति की विराट संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से जानने और महसूस करने का अवसर मिला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च करने की तैयारी। खान पान की परंपरा को ब्रांड बनाने के लिए सरकार शुरू करेगी एक जनपद एक व्यंजन योजना। प्रदेश में निवेशकों को उपलब्ध होंगी फास्ट ट्रैक सुविधाएं। औद्योगिक विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। इंडिगो की उड़ानों के परिचालन में आई बाधा की समीक्षा को लेकर सरकार ने गठित की 4 सदस्यीय समिति। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, सरकार का मुख्य ध्यान लंबित उड़ानों की संख्या कम करने पर। और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज। श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश भर में आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।